नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ग्रेग हार्वी की एक्सेल फॉर डमीज सेकेंड एडिशन फॉर डमीज कंप्यूटर बुक सीरीज की शुरुआती स्प्रेडशीट मार्गदर्शिकाओं में से एक है।
इसका उद्देश्य ऐसे पाठकों को एक्सेल से परिचित कराना है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, सूत्रों और कंप्यूटर आधारित गणना का बहुत कम अनुभव है।
1994 में प्रकाशित यह संस्करण उस दौर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए लिखा गया था, इसलिए इसके स्क्रीन
आदेशों और कुछ कार्य प्रणालियों को आधुनिक एक्सेल पर सीधे लागू नहीं मानना चाहिए। फिर भी पुस्तक का केंद्रीय शिक्षण आज भी प्रासंगिक है।
आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना, गणना को सूत्रों में बदलना, परिणामों को पढ़ने योग्य बनाना और उनका दृश्य प्रस्तुतिकरण करना।
हार्वी का दृष्टिकोण संदर्भ पुस्तक और क्रमिक प्रशिक्षण दोनों का मेल है। पुस्तक जटिल वित्तीय मॉडलिंग की अपेक्षा सामान्य कार्यालयी, घरेलू और व्यावसायिक गणना की बुनियाद पर केंद्रित लगती है। इसका मूल्य एक्सेल के पुराने संस्करण को सीखने से अधिक स्प्रेडशीट सोच की शुरुआती भाषा समझाने में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले वर्कशीट को पंक्तियों, स्तंभों और सेल के व्यवस्थित ढांचे के रूप में समझना। पुस्तक का सबसे बुनियादी विषय वर्कशीट की संरचना है।
एक्सेल में सूचना किसी मुक्त पाठ दस्तावेज की तरह नहीं लिखी जाती, बल्कि सेल नामक छोटे खानों में रखी जाती है। पंक्तियां सामान्यतः अलग अलग मदों, व्यक्तियों या समय अवधियों को दिखा सकती हैं, जबकि स्तंभ उनके गुणों जैसे राशि, तिथि या श्रेणी को अलग करते हैं।
यह व्यवस्था केवल देखने की सुविधा नहीं देती, बल्कि बाद की गणना और तुलना को संभव बनाती है। शुरुआती उपयोगकर्ता अक्सर आंकड़े तो दर्ज कर लेते हैं, पर शीर्षक, क्रम और रिक्त स्थान की योजना नहीं बनाते। ऐसी शीट में सूत्र गलत कोशिकाओं को संदर्भित कर सकते हैं और परिणाम समझना कठिन हो जाता है।
पुस्तक का आरंभिक पाठ इसलिए डेटा दर्ज करने, चयन करने, संशोधन करने और सेल संदर्भ पहचानने जैसी क्रियाओं को महत्व देता है।
इसका व्यावहारिक तर्क स्पष्ट है। स्प्रेडशीट की विश्वसनीयता उसके ढांचे से शुरू होती है। यदि मासिक खर्च, बिक्री या अंक एक समान स्तंभों में रखे जाएं, तो जोड़, औसत और क्रमबद्धता जैसी क्रियाएं अधिक सीधी बनती हैं।
आधुनिक एक्सेल में रिबन और नए उपकरण बदल चुके हैं, लेकिन साफ शीर्षक, सुसंगत डेटा प्रकार और योजनाबद्ध सेल विन्यास का यह सिद्धांत अपरिवर्तित है।
दूसरा, हाथ से गणना के बजाय सेल संदर्भों वाले सूत्रों का उपयोग। एक्सेल का निर्णायक लाभ यह है कि वह संख्या सूचियों को जीवित गणना में बदल देता है।
पुस्तक सूत्रों के माध्यम से इस अंतर को समझाती है, जहां परिणाम को हर बार हाथ से लिखने के बजाय संबंधित सेल का उपयोग करके निकाला जाता है।
उदाहरण के लिए, किसी पंक्ति की अलग अलग राशियों का योग एक सूत्र से निकाला जाए तो मूल राशियों में बदलाव होने पर कुल अपने आप बदल सकता है। यही पुनर्गणना स्प्रेडशीट को साधारण तालिका से अलग बनाती है।
सेल संदर्भों की समझ यहाँ विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सूत्र का अर्थ उसके भीतर लिखी संख्याओं से नहीं, जिन कोशिकाओं से वह जुड़ा है उनसे बनता है।
पाठक को गणितीय चिन्हों, योग जैसी अंतर्निर्मित क्षमताओं और सूत्र की प्रतिलिपि बनाने की उपयोगिता से परिचित कराया जाता है।
इस विषय का व्यावहारिक सबक यह है कि बार बार होने वाली गणना को एक बार सही ढंग से बनाना दोहराव और त्रुटि दोनों घटाता है।
साथ ही गलत परिणाम मिलने पर जांच का रास्ता भी मिलता है। पहले स्रोत आंकड़े, फिर संदर्भ और अंत में सूत्र।
पुस्तक उन्नत विश्लेषण की जगह इस अनुशासन को मजबूत करती है कि गणना पारदर्शी, बदलने योग्य और जांचने योग्य होनी चाहिए।
तीसरा, संख्याओं को पढ़ने योग्य बनाने के लिए स्वरूपण और पृष्ठ विन्यास स्प्रेडशीट में सही गणना पर्याप्त नहीं होती,
क्योंकि उपयोगकर्ता को परिणाम जल्दी और सही ढंग से पढ़ पाना भी आवश्यक है।
पुस्तक वर्कशीट के स्वरूपण की भूमिका पर ध्यान देती है, जिसमें शीर्षकों को अलग दिखाना, संख्याओं को उचित रूप में प्रदर्शित करना, स्तंभों की चौड़ाई समायोजित करना और मुद्रित पृष्ठ की योजना शामिल है।
मुद्रा, प्रतिशत और तिथि जैसे प्रदर्शन रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
एक ही संख्या अलग प्रस्तुति में अलग अर्थ दे सकती है, इसलिए राशि को सामान्य संख्या और प्रतिशत को सामान्य राशि की तरह दिखाना भ्रम पैदा कर सकता है।
इसी तरह बहुत संकरे स्तंभ या अस्पष्ट शीर्षक एक सही तालिका को भी अनुपयोगी बना देते हैं।
पृष्ठ विन्यास का महत्व उस समय और बढ़ता है जब वर्कशीट को कागज पर साझा करना हो।
प्रिंट क्षेत्र, पृष्ठों का विभाजन और दोहराए जाने वाले शीर्षक जैसी बातें रिपोर्ट की उपयोगिता को प्रभावित करती हैं।
इस विषय में पुस्तक का दृष्टिकोण सजावट से अलग है। स्वरूपण का लक्ष्य आंकड़ों को सुंदर बनाना भर नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
आधुनिक संस्करणों में शैली और लेआउट के विकल्प कहीं अधिक हैं, पर साफ, संयमित और उद्देश्यपूर्ण प्रस्तुति का नियम आज भी उतना ही उपयोगी है।
चौथा, चार्ट के माध्यम से तालिकाओं में छिपे रुझान और तुलना दिखाना। बड़ी तालिका में रुझान को केवल संख्याओं से पहचानना कठिन हो सकता है,
पुस्तक चार्ट को इस समस्या के समाधान के रूप में रखती है, क्योंकि दृश्य रूप किसी तुलना, हिस्सेदारी या समय के साथ बदलाव को अधिक जल्दी दिखा सकता है। लेकिन चार्ट बनाना केवल तालिका चुनकर एक चित्र तैयार करना नहीं है। उपयोगी चार्ट के लिए सही डेटा सीमा, स्पष्ट श्रेणियां और माप के अनुकूल चार्ट प्रकार जरूरी होते हैं। समय के साथ बिक्री या खर्च का बदलाव रेखा आधारित प्रस्तुति में स्पष्ट हो सकता है, जबकि अलग मदों की तुलना स्तंभों के जरिए समझी जा सकती है। यदि बहुत अधिक श्रेणियां, अस्पष्ट लेबल या अनुपयुक्त माप जोड़ दिए जाएं, तो चार्ट जानकारी देने के बजाय भ्रम बढ़ा सकता है। शुरुआती पाठक के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह एक्सेल को केवल कैलकुलेटर न समझे। वही डेटा जिसे सूत्रों ने संसाधित किया है, निर्णय लेने वाले व्यक्ति तक समझने योग्य रूप में भी पहुंचना चाहिए। 1994 के एक्सेल में उपलब्ध चार्ट विकल्प आज के संस्करणों से सीमित थे, फिर भी चयन, लेबल और उद्देश्य के बीच संबंध का मूल विचार स्थायी है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि चित्र डेटा का विकल्प नहीं, उसके अर्थ को स्पष्ट करने का माध्यम है। अंत में, पुराने एक्सेल वातावरण में बुनियादी कार्यालयी कामों के लिए आत्मनिर्भरता। यह सेकेंड एडिशन अपने समय के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वातावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया था, इसलिए इसमें बताए गए मेनू, संवाद पट और स्क्रीन संबंधी चरण आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल के समान नहीं होंगे। फिर भी पुस्तक की उपयोगिता इस बात में है कि वह शुरुआती उपयोगकर्ता को सामान्य कार्यालय कामों को छोटे समझने योग्य चरणों में बांटने की आदत देती है। डेटा डालना, सुधारना, गणना करना, सहेजना, प्रिंट करना और परिणाम साझा करना, ये सभी काम मिलकर एक पूरी स्प्रेडशीट प्रक्रिया बनाते हैं। केवल एक सूत्र जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि उपयोगकर्ता फाइल को व्यवस्थित ढंग से संभाल नहीं सकता या रिपोर्ट को उपयोगी रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता, फॉर डमीज श्रृंखला की सुलभ शैली तकनीकी शब्दावली से घबराने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसका जोर विशेषज्ञ बनने के दावे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए पर्याप्त परिचय देने पर है। आज का पाठक इसे ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और स्प्रेडशीट सिद्धांत दोनों दृष्टियों से पढ़ सकता है। समकालीन उपयोग के लिए इसे नवीन एक्सेल मार्गदर्शिका के साथ जोड़ना उचित होगा, क्योंकि सहयोग, क्लाउड भंडारण, आधुनिक फंक्शन और वर्तमान इंटरफेस इस पुराने संस्करण के दायरे से बाहर हैं। निष्कर्ष में, एक्सेल फॉर डमीज सेकेंड एडिशन उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो शुरुआती माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ काम कर रहे हैं, पुराने कंप्यूटिंग साहित्य का अध्ययन करते हैं या स्प्रेडशीट की मूल कार्य पद्धति को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर संस्करण को आज के कार्यस्थल में सीखने के लिए यह अकेली पुस्तक पर्याप्त नहीं मानी जानी चाहिए। आधुनिक एक्सेल में इंटरफेस, साझा संपादन, डेटा आयात, पिवट टेबल, नए फंक्शन और स्वचालन की क्षमताएं बहुत बदल चुकी हैं। फिर भी पुस्तक से मिलने वाला बौद्धिक लाभ स्थायी है। यह समझाती है कि आंकड़ों को कैसे संरचित किया जाए, गणना को हाथ से दोहराने के बजाय सूत्रों में कैसे बदला जाए और परिणामों को तालिका, प्रिंट और चार्ट के रूप में कैसे उपयोगी बनाया जाए। ऐसे सिद्धांत अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में भी काफी हद तक लागू होते हैं। समान श्रेणी की विशाल आधुनिक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान सीमित और आरंभिक दायरे में है। यह उपयोगकर्ता को तुरंत उन्नत विश्लेषण की ओर नहीं धकेलती, बल्कि सेल, संदर्भ, गणना और प्रस्तुति के संबंध को क्रम से स्पष्ट करती है। ग्रेग हार्वी का प्रशिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण तकनीकी भय को घटाने में सहायक है। यदि लक्ष्य वर्तमान एक्सेल में दक्षता है, तो इसे अद्यतन स्रोत के पूरक के रूप में पढ़ें। यदि लक्ष्य स्प्रेडशीट की बुनियादी तर्क प्रणाली है, तो इसका ढांचा अब भी उपयोगी और स्पष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ग्रेग हार्वी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।